Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahimna Stotra, presented by Swami Sri Muktanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Namo Brahmadibhyo. ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमः गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः दिक्कालादनवचिन्न छिन्नमात्रमूर्तये स्वानुभूतेकाय नमः शान्ताय तेजसे ॐ शांति शांति शांति।
आइए भगवान शिव का गुणगान करके अपने वाणी और कानों को पवित्र करते हैं। श्री महिमन में बहुत सुंदर लिखा है, महिमना पारंते परम विदुषो यद्य सदृश स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्व स्वमिति परिणामावधिगृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः। ते महिमा, आपकी जो महिमा है वो अपरंपार है, उसको कोई गा नहीं सकता, कोई नहीं गा सकता। फिर हम कैसे गान कर सकते हैं? अगर आपका गान हम नहीं कर सकते तो फिर ब्रह्मा आदि की स्तुति भी व्यर्थ हो गई। बात ऐसी नहीं है प्रभो, हम तो आपकी महिमा का पार नहीं पा सकते, लेकिन आपके गुणों का गान करके हम अपनी वाणी को पवित्र कर सकते हैं। तो भगवान शिव की अनंत महिमा है, और उन भगवान शिव की अनंत महिमा का गुणानुवाद करके इस श्रावण मास में हम अपनी वाणी को, हम अपने कानों को पवित्र करते हैं। भगवान भाष्यकार ने कहा, प्रातः स्मरामि भवभीति हरम सुरेशम। हम प्रातःकाल स्मरण करें, किसका स्मरण करें? जो हमें संसार से पार लेकर के जाए, जो हमें संसार से पार लेकर के जाए उसका हम स्मरण करें। और जो संसार से पार ले जाने वाले हैं वो तो शिव ही हैं, क्योंकि सारी विद्याएं उन्हीं से ही आई हुई हैं। गुरु हैं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। उपनिषद में उनके लिए लिखा है, आपने बहुत बार उस उपनिषद का प्रवचन सुना है, वहां लिखा है, नांतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमं शिवं शांतं अद्वैतं मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः। कैसे हैं शिव? बड़ी विलक्षण बात की उपनिषद के ऋषि ने, बड़ी विलक्षण बात की। कहते हैं वो अग्राह्य हैं, अदृश्य हैं। अदृश्य माने जिनको देखा ना जा सके। देखना किससे है? इन नेत्रों से। क्या हम नेत्रों से देख सकते हैं? नेत्रों से तो हम अपने आप को भी नहीं देख सकते, इसलिए वो अदृश्य हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के आने वाले नहीं हैं, इसलिए उनका एक एक विशेषण दिया, अशब्दम स्पर्शम रूप मरसम। जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से परे है, उनसे बहुत परे, तो अदृश्य हैं, वह देखने में नहीं आते हैं। इंद्रियों से परे हैं। जब अदृश्य हैं तो उनका व्यवहार कैसे करें हम? ग्रहण नहीं होते तो अग्राह्य है। जो अदृश्य है वह अग्राह्य है, हम उनको पकड़ नहीं सकते, न मन से पकड़ सकते हैं, न बुद्धि से पकड़ सकते हैं, हम उनको पकड़ नहीं सकते। तो फिर क्या करें? बात तो ऐसा ही है, येन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। येन मनसा न मनुते, मन के द्वारा हम उस परात्पर शिव का मनन नहीं कर सकते। येनाहुर मनोमतम अपितु, जिसकी विद्यमानता में, जिसकी शक्ति को लेकर के ये मन मनन कर रहा है, तो मन का ही तो आश्रय है पकड़ने के लिए हमारे पास। और आश्रय क्या है? वही एक आश्रय है। तो कैसे पकड़ें उसको? ये देखो, ऋषियों की वाणी है, बड़ी महिमावान है। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मयाः सूक्ष्मदर्शी भी। कहते हो अदृश्य है लेकिन फिर भी दृश्यते। दोनों ही उपनिषद वचन है। एक तरफ कहा अदृश्यम, ये भी उपनिषद वचन है मांडू के उपनिषद का। एक तरफ कहा दृश्यते, दिखाई देता है। तो यहां जो अदृश्यम का अर्थ है वह इंद्रियातीत, और जो दृश्यते शब्द का प्रयोग किया वह अनुभूति गम्य है, वह अनुभूति में आ जाते हैं। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मयाः सूक्ष्मदर्शी भी। दिखाई दे जाते हैं, ऐसी बात नहीं दिखाई नहीं देते, दिखाई तो देते हैं लेकिन अनुभवैक गम्य है, वो अनुभवैक गम्य है, उनको हम पकड़ नहीं सकते। अनुभव में है तो अदृश्यम अग्राह्यम, ग्रहण नहीं होते वो। महाराज ग्रहण नहीं होते तो अव्यवहार्यम, व्यवहार्य भी नहीं है, हाँ, व्यवहार्य भी नहीं है, तो अचिंत्यम, तो उनका चिंतन करना भी मुश्किल है, चिंतन का विषय नहीं है। स्वयं चेतन है, स्वयं चेतन है, चिंतन का विषय नहीं है। देखो कितना आनंद आ रहा है हमारे बहुत पुराने सत्संगी स्वामी त्यागमूर्ति जी महाराज के शिष्य हैं, तो गणेशानंद जी महाराज के, स्वयं चेतन है और स्वयं स्वयं का चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए अचिंत्यम कहा। तो अचिंत्यम है तो महाराज उसको कहें कैसे? कहा अव्यपदेश्यम, उनका व्यपदेश माने कथन भी नहीं हो सकता। ये शिव हैं, ये औपनिषदिक शिव हैं, औपनिषदिक शिव, ये वैदिक शिव हैं, वेद के देवता हैं ये, महाराज उपनिषदों में है ये, उनका कथन भी नहीं हो सकता। एकात्म प्रत्यय सारम, आहा हा, संसार सारम, संसार सार है वो, संसार के एकमात्र सार वे ही हैं। प्रपंचोपशमम, प्रपंच है नहीं वहां पर, लेकिन सारा प्रपंच उन्हीं में ही है। आकाश में प्रपंच है, आकाश में प्रपंच नहीं है, क्योंकि आकाश निर्लेप है। आकाश निर्लेप है फिर भी आकाश में प्रपंच है, और जो निर्लेप है, सूक्ष्म है, निरावयव है, उसमें प्रपंच कैसा? गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही, रुद्राष्टकम नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। बड़ी सुंदर बात कही। तो वहां का चिदाकाश माकाश वासम, देखो ये आकाश है, ये आकाश है। नमामि शमीशान, ईशम और ईशानम दोनों भगवान के नाम हैं। सर्वश्रेष्ठा, उपनिषद में कहा कि शिव क्या है, संपूर्ण संसार के अनुशासन करने वाले हैं, अधिष्ठाता हैं, इसलिए इनका नाम ईशान है। ईशान इसीलिए है, ईशान सर्व विद्यानाम, संपूर्ण विद्याओं के स्वामी हैं, इसलिए ईशान है। और ईश है नमामीशम ईशान, ईशम ईशानम नमामि। ईश क्यों है? सर्वव्यापक है। उपनिषद में आप पढ़ते हैं ना, ईशा वास्यम इदम, हाँ, ईशा माने ईश्वर के द्वारा, इट प्रवेश ने धातु है जिससे ईश शब्द बनता है। तो जो सर्वत्र प्रवेश किया हुआ है, सर्वत्र व्यापक है, जो सर्वव्यापक है, ऐसे जो शिव हैं वो ईश हैं। ईश तो वही है संपूर्ण अच्छा आप देखिए शब्दकोश है ना, डिक्शनरी आप शब्दकोश में देखिए, चाहे अमरकोश हो, चाहे शब्द कल्पद्रुम हो, संस्कृत के शब्दकोश जो प्राचीन है, उसमें ईश्वर शब्द केवल और केवल शिवजी के लिए ही आया है। ईश्वर शब्द शिवजी के ही पर्यायवाची में आया है, आप देखिए, क्योंकि ये ईश हैं, यही अकेले सारे संसार के स्वामी हैं। और ईशान हैं, स्वामी तो हैं लेकिन शासन भी करने वाले यही हैं, यही स्वामी हैं और यही संपूर्ण संसार का शासन करने वाले हैं। अगर ये शासन ना करे तो कितना हाल हो जाए महाराज, बहुत बुरा हाल हो जाए अगर ये शासन ना करें तो। इसलिए तो इनका एक नाम महेश्वर है। सभी लोग डरते हैं इनसे, ये रुद्र है, रुद्र माने जो बहुत उग्र हो, है ना, हाँ बहुत उग्र हो। इनका एक नाम, अष्टमूर्तियों में इनकी एक मूर्ति उग्र भी है, अष्टमूर्तियों में इनकी एक मूर्ति उग्र भी है। आठ मूर्तियां शिव सर्व ईशान उग्र भीम, ये आठ मूर्तियों में से एक मूर्ति इनकी उग्र है। उग्र का अर्थ है हाँ, जो अपराध करता है, अपराध करता है वो इनसे बच नहीं सकता, इनसे नहीं बच सकता, क्योंकि ये ईशान है, शासन करने वाले हैं संपूर्ण विश्व पर। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम, और ये निर्वाण है। निर्वाण जानते किसे कहते हैं? ये तो उपनिषद वचन है, उपनिषद का टेक्निकल वर्ड है ये। वाण कहते हैं शरीर को, वाण किसे कहते हैं? जो वाण से रहित है। हमारे कितने शरीर हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, संस्कार मात्र होता है, वासना मात्र है ना, सूक्ष्म शरीर 17 अवयवों से मिलकर के होता है और क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचा अधम अधम है या उत्तम है इस पर हम बात नहीं करते, लेकिन पंच तत्वों से मिला हुआ यह शरीर है और संस्कार मात्र है कारण शरीर, और कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है। संस्कार है तो जन्म है, संस्कार है तो मृत्यु है, संस्कार है तो सुख है और संस्कार है तो, लेकिन वो तो निर्वाण है क्योंकि न उनका जन्म है और न उनकी मृत्यु है। संस्कार नहीं है वहां, अविद्या नहीं है वहां, अविद्या का ही परिणाम संस्कार है, अविद्या का ही परिणाम जन्म और मरण है, अविद्या का परिणाम ही परिच्छिन्नता है। वो तो अधिपति है माया के, मायांतु प्रकृतिम विद्यात मायिनम तु महेश्वरम। माया प्रकृति है और माया भी महेश्वर है। जैसे जादूगर को दिखाने वाला, जादू दिखाने वाला दूसरे को तो भ्रम में डालता है लेकिन स्वयं भ्रमित। गुजरात में बलसाड में एक बार एक बहुत जादूगर लड़की थी, उसको बुलाया, लड़की बड़ा नाम था उसका, वो स्वयं ही चल के आई। हमारे एक मित्र हैं स्वामी विद्यानंद सरस्वती, बरुमाल में उनका बहुत बड़ा आश्रम है, बड़ा काम कर रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में, और अष्ट धातु की उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, पंचमुखी महादेव की। तो वहां कार्यक्रम था, वहां हम गए हुए थे, तो महाराज वहां बुलाए एक जादूगरनी को, तो उसने कहा देखो अब बात ऐसी है, मेरे पास कुछ है नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन इतनी बात है जो मैं बोलूंगी वही आप सुनोगे और जो मैं दिखाऊंगी वही आप, बस इतनी बात है मेरे पास। अब आप अपनी इच्छा से नहीं देख सकते, न अपनी इच्छा सुन सकते हैं, जो मैं बोलूंगी वही सुनोगे और जो मैं दिखाऊंगी। तो महाराज उसने क्या किया, एक उसके ऊपर टेबल पर एक आदमी को लिटा दिया और आदमी को लिटा करके हम तो सबसे आगे बैठे हुए थे, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, हमारे सामने टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इतना ही नहीं किया, उसने पैर इधर है, धड़ बीच में है, सिर इधर है, उसने कहा पैरों को हिलाओ तो पैर हिल रहे, खाली पैर, केवल पैर ही हिल रहे हैं। अगर महाराज सच में टुकड़े कर दिए जाएं तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। बस टुकड़े सच में नहीं होते, हमारे मन को मोहित कर दिया जाता है, मन को मोहित कर दिया जाता है। और ये जो सभी के मन को एक साथ मोहित कर दिया जाता है, मास मेस्मोरिज्म, तो जो वो दिखाना चाहती वही हम देख पाते, दूसरा कुछ नहीं देख पाते, बिल्कुल अलग अलग टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक रुमाल लिया, रुमाल को ऐसे किया और ऐसे हटाया तो कबूतर, केवल रुमाल सबको हाथ में दिखाते हुए। तो मायावी माया से मोहित नहीं होता, जो माया में देखने वाले हैं, माया में फंस रहे हैं, वही माया से मोहित होते, उसे मालूम है वो क्या कर रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है इसने रुमाल का कबूतर बना दिया, हमें तो ऐसा लग रहा है इसने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हमें लग रहा है। बचपन में तो गांव गांव में आते थे खेल दिखाने वाले, अब तो वो कम हो गए गांव में आने वाले। तो हम देखा एक बार, छोटे थे, बच्चे थे, तो एक कांच का इतना मोटा गोला, कांच का गोला, और उसने ऐसे उछाला एक तीसरे आदमी के पास, दूर जाकर खड़े होकर कहने लगे इसने मेरा गोला लिया है। वो ले लिया, कहीं है ही नहीं, तो महाराज उसको यहां हाथ लगाया, ऐसे गोला निकाल दिया। ये क्या है कि ये केवल जादू है, सच में नहीं है। एक बार क्या किया, एक आम का पौधा बनाया उसने, इतना अपने आप बन गया, फिर उसमें फल भी लगा दिया। ये बचपन की घटनाएं हमने देखी जादू की। तो ये जादू है जादू, लेकिन जादूगर जादू से कभी भी मोहित उसको आश्चर्य नहीं होता। ये तो महेश्वर है, माया माया तो प्रकृति है, और प्रकृति माया है, लेकिन इस माया के जो अधिपति हैं वो भगवान शिव हैं। मायांतु प्रकृतिम विद्यात मायिनम तु महेश्वरम, इसलिए माया उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, इसलिए वो देह से परे हैं, निर्वाण रूपम। वो तो निर्वाण है महाराज। अच्छा, एक निर्वाण का अर्थ मोक्ष भी होता है, कहते हैं निर्वाण प्राप्त कर गए, कहते हैं ना। ये निर्वाण शब्द बौद्धों में और जैनियों में फिर बाद में बहुत प्रचलित हुआ। तो निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कर गए। मोक्ष कब मिलेगा, जब पहले अज्ञान होगा। तो क्या कभी अज्ञान था उनमें? नहीं, जो सदा सदा ही शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। विभु है वो, देखिए दो शब्द एक साथ दिए हैं तुलसीदास जी ने, एक विभु है और एक व्यापक है। तो विभु में व्यापक में क्या है, विभु व्यापक को ही कहते हैं। लेकिन विभु क्यों कहा, विशेषण भवतीति विभु। हमारा जन्म हुआ, हमारे जनक हैं, उनके भी जनक है, उनके भी जनक हैं, उनके भी जनक है, कहां तक चले महाराज, कहां तक चले। हमें वहीं तक जाना होगा जिसका कोई जनक नहीं होगा, बस उसी को ही विभु कहते हैं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। ये उपनिषद एक शिव है, ये सारे के सारे शिव के ही मंत्र बोल रहा हूं उपनिषद के। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत् समश्चाभ्यधिकं च दृश्यते। उसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, उससे कोई पैदा भी नहीं हो रहा, और फिर ये संसार कहां से आया। देखिए यही वेदांत है, उससे उसको किसी ने पैदा नहीं किया, उससे कोई पैदा भी नहीं हुआ, तो संसार कहां से आया। कहने लगे महाराज ये तो उसकी अपनी लीला है, अपने ही अंदर से अपने ही आप प्रकट कर दिया है, केवल एक प्रतीति है, प्रतीति प्रतीति है। मैंने स्वप्न लिया, स्वप्न में मेरी सारी की सारी सृष्टि आ गई, उसका मेटेरियल कॉज क्या था, इफिशियंट कॉज क्या था, क्या तो उसका निमित्त कारण था, क्या उसका उपादान कारण था, क्या उसका साधारण कारण था, क्या वह पैदा हुआ, क्या वह नष्ट होता है। अरे जो पैदा ही नहीं हुआ उसका नाश कैसा। आदा वंते च यन्नास्ति मध्यपेपी तत्तथा। जो आदि में नहीं है, जो अंत में नहीं है, मध्य में भी है नहीं, दिखाई दे रहा है बस। आदि में नहीं है, मध्य में भी नहीं है, अंत में नहीं है, तो मध्य में भी वो है नहीं, बस यही शिव की शिवता है, यही शिव की शिवता है। तो इसी को ही कहते हैं विभु, विशेषेण भवतीति विभु। विभुम व्यापकम, और व्यापक है, जर्रे जर्रे में मौजूद है, पर नजर आता नहीं, बिना योग साधना के वह किसी को। अरे जर्रे जर्रे में मौजूद नहीं है, जर्रा जर्रा उसमें मौजूद है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य, अरे आस्य शिवस्य, अस्य शंभो महेश्वरस्य वा, सब कुछ इस शिव के अंदर है, और ये शिव सबके बाहर भी है। क्योंकि एकांशेन स्थितम जगत, सारा का सारा जगत एक अंश में ही ठहरा हुआ है, वो अंश कितना बड़ा होगा उसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापक है, व्यापक की व्याख्या कैसे करें, बस समझने और समझाने के लिए है। अच्छा, एक छोटा सा इंस्टिंक्ट, चींटी से भी छोटा, बहुत छोटा, मेरे उंगली के एक भाग पर बैठ गया, उसकी दृष्टि में वो मेरे कितने अंश में बैठा है। और फिर वो तो निरवयव है और व्यापक है। हमें तो अपने समझने के लिए एक बात कही है कि ये संसार उसके एक अंश में स्थित है, वह संसार में है और संसार से बाहर भी है, लेकिन संसार उससे बाहर, वह संसार में है और संसार से बाहर है, लेकिन संसार उससे बाहर नहीं है, इसलिए विभू भी है और व्यापक भी है। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विगुम व्यापकम ब्रह्म। आहा, देखो एक ब्रह्मसूत्र है, आप तो ब्रह्मसूत्र यहां तो सब जानते ही हैं। ब्रह्मसूत्र है शास्त्रीय नित्वात्, ब्रह्म का कारण कहां है, ब्रह्म का घर कहां है, कहां रहता है ब्रह्म, वेद में कहां रहता है, वेद में क्यों रहता है। कहने लगे हम तो अपनी दृष्टि से कहते हैं कि हमें उसका पता वहीं से ही चलता है, हमें पता वहीं से ही चलता है, नहीं तो यस्य निश्वसितम वेदा यो वेदेभ्योखिलम जगत निर्ममे तमहम वंदे, जिसके श्वास से सारे वेद प्रकट हुए हैं और जिसने वेद से सारे संसार को बनाया है, ऐसे विद्या के अधिपति भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन पता तो हमें वेद से ही चलता है, इसलिए परमात्मा का रेजिडेंस कहां है, वेद है। किसकी दृष्टि से, हमारी दृष्टि से। क्यों, क्योंकि जब भी ब्रह्म क्या है, कैसा है, क्या स्वरूप है उसका, कैसे उसकी प्राप्ति होगी, ये हमें वेद से ही पता चलता है।